ओम शांति। आज सबने बाबा की मुरली सुनी थी, सवेरे याद है। आज बाबा ने मुख्य तीन बातें बताई सारे मुरलियों में से धारण करने योग्य। एक बाबा ने बताया आज, बाप सत्युग की राजाई किन बच्चों को देता है, ये इनाम है ना, गिफ्ट है, तो किन बच्चों को देता है, जो याद की यात्रा में रेस करते हैं। रेस में नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री होते हैं, है ना, एक ही नंबर नहीं होता है। अब आप सोचो कि उस रेस में नंबर वन रेस क्या है, नंबर टू क्या है, नंबर थ्री क्या है, कौन सी है वो, तो वो सोचना पड़ेगा ना। रेस में सभी एक जैसे नहीं हो सकते। फिर दूसरी बसरा पॉइंट बाबा ने आज कहा कि कहां बैठे हो, परमपिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हो, ऐसा लगता है कहां बैठे हो, परमात्मा थोड़ी है इधर। तो बाबा ने आज कहां बैठे हो, परमपिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हो, कैसे इसका समझेंगे। तीसरी बाबा ने आज और एक बताया, और कौन बताएगा, आज एक बहुत अच्छी बात बताया, बच्चे क्या समझो, हर सेकंड निरंतर योगी अगर बनना चाहते हो, थोड़े समय के लिए नहीं, निरंतर, कैसे होगा वो, तो बाबा ने कहा करण करावन हार की स्मृति रखो, सब कुछ वो करा रहा है। हो सकता है ऐसा, तो सारी मुरली सुनने के बाद तो सत्संग से सदगति होती है, सदगति और दुर्गति। सदगति माना हमारे हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ होते हैं। अगर ज्ञान सुनने के बाद, सत्संग सुना, मुरली सुनी, अगर उसकी स्मृति नहीं है, याद ही नहीं है, तो कर्म तो करेंगे, देखेंगे भी, बोलेंगे भी, कर्म भी करेंगे, वो तो कम नहीं होगा क्योंकि शरीर में है। तो वो कर्म, वो विचार, वो दृष्टि, वो बोल कैसे होंगे, कैसे होंगे, जैसे पहले होते थे, है ना, तब का सत गति नहीं, दुर्गति होती है। तो भगवान मिलने के बाद भी तो भगवान अपने आप चमत्कार नहीं करता है, उसका नाम है भाग्य विधाता है, विधि बताता है, भाग्य आपको बनाना है, है ना। जैसे खेती में एक बीज बोलो तो 50-100 दाना लगते हैं, बिना बोए हुए कुछ अपने आप उगेगा, हाँ भगवान करेगा, कर सकता है, साइंस ने, भगवान ने ऐसे कोई चमत्कार नहीं किया आज तक। बच्चे हिम्मत का एक कदम रखो, एक बीज बोलो। यहां भी आज बाबा ने कहा कि रेस में तीन पद होते हैं, इस राजाई में भी तीन पद है, एक राजा है, एक रॉयल फैमिली वाले है, और एक प्रजा है। अभी आप पूछ लो अपने आप को, आप जब योग में बैठते हो तो योग की यात्रा है, एक शरीर की दौड़ है, ये आत्मा की दौड़ है, उसमें आप नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री कौन सा है। तो तीन अलग अलग विधि है, एक है योग में बैठे, योग में बैठते क्या विचार कर रहे हो, ज्ञान का चिंतन करते हो। आज बाबा ने ये कहा था, आज बाबा ने ये कहा, मुरली का चिंतन करते हो, ये एक है। दूसरा और एक है कि सूक्ष्मतन में बाप दादा से रूढ़िहान करते हो। तीसरा एक है, कौन सा है वो, परम धाम में शिव बाबा है, बाबा ने कहा बुद्धि योग मेरे से लगाओ, है ना। तो उसकी आज बाबा ने कहा विधि है, क्या विधि है, तो वो भी सबको याद नहीं है, सभी को पता ही नहीं चलता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग की विधि है, कौन सी है वो, हाँ ये भूलना नहीं चाहिए। तब बाबा ने कहा आज कि बहुत बच्चों को ये याद नहीं रहता है, बाबा के कमरे में जाते हो सीधा बात करने लगते हो, योग में बैठे हो शरीर का भान रहता है, शरीर छोड़ नहीं सकते, शरीर में रहते हुए भी यही स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है। तो शुभ बाबा आकर के कौन सा राजयोग सिखा रहे, जो दुनिया में अब तक किसी ने नहीं सुनाया था, तब भगवान को आना पड़ा, वो कौन सा राजयोग है, कोई पूछेंगे ना, तो शास्त्रों में है, किताबों में है, वही सुना रहे हो, नहीं, यहां बाबा ने नंबर वन का बच्चे पहले आत्मा समझो। अभी माताजी तो दिखाई दे रही है, तो माताजी को कैसे समझू मैं बताओ? ये भाई तो दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं देता है, भाई दिखाई देता है, तो इसको समझू मैं आत्माओं पता है तो आत्मा को समझू, समझ कर मुझे याद करो। ये कैसे वो बताओ, कौन बताएगा? भाई तो दिखाई देता है, आत्मा एक ज्ञान है, सुन लिया पहले ही, तो आत्मा को समझना क्या है? हाँ ये भाई तो दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई जी आपका नाम, आप कहां से आए हो, आप क्या करते हो, पूछेंगे ना, तब कहेंगे मैंने इनको अच्छी तरह से समझा। पहले सिर्फ भाई इतना जानता था, तो पूछते हम उसको आपका नाम, आप कहां से आ रहे हो, क्या करते हो, ये सब पूछने के बाद ये कौन है समझ में आया। ऐसे ही जब भी आप आते हो, सारा दिन शरीर में रहते हो, शरीर की स्मृति रहती है, रहनी चाहिए, नहीं से नहीं, तो तब उसने कहा पवित्र जीवात्मा हो। आज बाबा ने कहा जीव है, शरीर नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तो जब यहां आके बैठते हो अमृत वेले और शाम को, दो समय है ना, तो जब भी बैठते हो अशरीरी बनो, आत्म अभिमानी बनो। कैसे बनेंगे? आत्म अभिमान तो बनना चाहिए, कैसे बने? क्योंकि आत्मा का आवाज ही ऊपर जाता है। अगर शरीर की स्मृति है, मैं शरीर समझते हो, अगर माता अपने को माता समझती है तो माता को कौन याद आएगा? बच्चे याद आएंगे, पति याद आएगा, घर आना याद आएगा, आना चाहिए, गलत नहीं है। माँ की जिम्मेवारी है अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर की जिम्मेवारी है, अरे पेशेंट को दवाई दिया था वो ठीक है कि नहीं है, उसको ये देना चाहिए, उसकी जिम्मेवारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, माँ की जिम्मेवारी है, गलत नहीं है। तब बाबा ने कहा कम से कम यहां आके बैठते हो अपने स्वरूप को, अपने को जागृत करो। वो कैसे करे? वो विधि चाहिए, बहुत सहज है। देखो भारत एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ता है, तो आत्मा को भी दो हाथ है, पता है, एक मन और एक बुद्धि। मन बुद्धि को एक करो, शरीर का चिंतन नहीं, इधर बैठते ही आके बैठो, बैठते ही आंखें खोल के आराम से बैठो, विधि बताया बाबा ने। अभी आप पूछना नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, राजा बनेंगे या प्रजा योग, हाँ कि कौन सा योग में बैठे हो? बैठते ही, क्योंकि नए नहीं, अभी पुराने हो, कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो मैं इतना दिन में जो कर रहा हूं, करता था, वो क्या कर रहा था और क्या करना चाहिए, इसलिए मधुबन में आते हो, कंपेयर करना चाहिए, है ना, देखना चाहिए हम कहां हैं। तब कहा मधुबन को क्या कहते, शीश महल है, यहां आते ही पता चलता है हम कहां हैं, क्या कर रहे थे इतना समय। तो इसलिए आते अपने आप को देख लो, बैठते ही मैं कौन, बुद्धि को पूछते हो, है ना, बुद्धि के अंदर समझ है, हाँ बाबा ने मुझे क्या समझाया, तुरंत बुद्धि कहेंगे मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। फिर मन पूछता है मेरा रूप, तुरंत बुद्धि जवाब देती है मैं सफेद चमकता हुआ सितारा, इस भ्रुकुटी के बीच में बैठा हूं, कल बताया था सितारा चमकता हुआ, सफेद चमकता हुआ सितारा, इस भ्रुकुटी के बीच में बैठा हूं, बुद्धि जवाब देती है मैंने इनको पूछा, इसने जवाब दिया ना। तीसरा मेरे गुण सात गुण है, दैवी गुण है, एक एक गुण याद करो। हाँ मैं पवित्र था, आज नहीं है, कब था? जब परम धाम से आया था सत्युग में, तब संपूर्ण पवित्र था, अब मुझे संपूर्ण ऐसे पवित्र बन के जाना है, तब सत्युग में आएंगे, थोड़ी कमी रहेगी तो कहां जाएंगे, मुक्ति धाम में, है ना, जीवन मुक्ति में आना है। फिर मैं कैसे था? शांत स्वरूप था, कब था? अभी, पहले था। एक एक गुणों को याद दिलाओ, मैं कैसे था, अब मुझे क्या करना है। चौथा मैं क्या करता हूं, ब्रकुटी में बैठा हूं, बाबा कहते हैं मुरली में भी अशरीरी बनो, विदेही बनो। अच्छा ये क्या बड़ी दीदी मिलने वाले के, बनारस के सभी बनारस वाले है, तो दीदी को इधर बुलाओ ना, इधर ही दीदी, बैठे हैं? अच्छा, नहीं तो मैंने कहा दीदी इधर बैठ सकते, हाँ इधर सब लोग हैं, सभी बनारस के हैं ना? हाँ दीदी बुला रही कहाँ? मेडिटेशन हॉल में। हाँ तो कहते हैं ये बनारस का भाई। हाँ तो उधर है तो उधर भी दीदी को कुछ बताना होगा ना डायरेक्शन कि बताया बताया नहीं कुछ। ठीक है चलो उधर भी जाओ। हाँ इधर से जाना, पीछे से जाना, कभी भी अंदर घुसते हैं ना पीछे से आना, पीछे से जाना, जो जाने वाले है वो जाओ। तो समझ में आया, जब भी बैठते हो आत्मा समझो। समझने के लिए ये पांच प्रश्न याद रखना चाहिए। एक, मेरा रूप मैं कौन, फिर मेरा रूप, फिर मेरे गुण, फिर मेरे कर्म मैं क्या करता हूं। इसलिए क्या अशरीरी बनो कहते हैं, शरीर को याद नहीं करो। तो यहां बैठते आत्मा का चिंतन करो। तो मैं बैठ के नहीं, तो योग में बैठे इधर देखते हो उधर देखते हो तो योग नहीं लग रहा है, योग अपने आप नहीं लगता है, लगाना पड़ता है। हाँ बाकी को, हाँ बाकी जो जाने वाले है वो जाओ, बाकी जो बैठने वाले बैठेंगे। ठीक है, हाँ पीछे से जाना माता जी, पीछे से, हाँ उधर से जाओ ऐसा फटाफट। समझ में आया? तो जब भी तब बाबा ने कहा ये रेस है, यहां से परम धाम तक जाने की रेस आत्मा की रेस है, शरीर की नहीं है। तो आत्मा की रेस यहां से परम धाम तक जाएंगे तो कैसे जाएंगे? अपने आप तो नहीं कहेंगे इसी रास्ते से जाना, इधर उधर घूमना नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना, रास्ता बताते हैं। सीधा जाएगा तो नंबर वन पहुंचेंगे, टेढ़ा मेढ़ा जाएंगे नंबर टू पहुंचेंगे। तो बैठते ही विधि चाहिए कि मैं कौन, अपने को जागृत करो। मेरा रूप मेरे गुण, जल चलेगा बैठ जाओ, मेरा रूप मेरे गुण, सात गुण है, अपने आप को याद दिलाओ। क्या चिंतन करे तब मन और बुद्धि सीधा जाएंगे, नहीं तो इधर उधर जाएंगे, कौन आया कौन गया है ना। तब कहा विधेयी, शरीर का उपयोग नहीं करो। सारा दिन शरीर के द्वारा आंखों से इधर देखते हो, हाथ हिलता है पाव हिलता है, तब कहा लाइव, उसको कहते हैं कि रिलैक्स हो जाओ, अशरीरी बनो, शरीर का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये समझना चाहिए उसको। चौथा प्रश्न, आंखों के द्वारा योग में बैठे एक रस, इधर उधर कुछ नहीं, 10-15 मिनट ही, एक घंटा नहीं चाहिए। चौथा, मेरे कर्म, मैं आंखों से देखता हूं मुख से बोलता हूं, अभी 15 मिनट जब बैठे इधर उधर देखना नहीं, ये चिंतन चाहिए, आत्म चिंतन। पांचवा, मैं कहां से आया, परम धाम से। ये पांच प्रश्न याद रखना, तो इसको कहेंगे आत्मा समझना, आत्मा चिंतन चाहिए। आत्म चिंतन करेंगे तो आप क्या कहेंगे, सिर्फ आत्मा के प्रति सोचेंगे, मैं आत्मा हूं ज्योतिर्बिंदु चमकता हूं सितारा हूं, ऐसे रिपीट नहीं, आराम से मन पूछता है मैं कौन, बुद्धि से मन बुद्धि को एक करना है, मन बुद्धि मेरे से जोड़ो। का भारत में एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ने को नमस्ते कहते हैं सिर्फ भारत में। तब बाबा ने कहे अविनाशी खंड है, बात इस भारत में आता है और कहीं भी नहीं आता है। और भारत की भाषा कौन सी, इंग्लिश। हाँ हाँ, आज बाबा ने कहा भारत में आता हूं भारत की भाषा में बोलता हूं, है ना, तो हिंदी भाषा है। तो इसके लेकर भारत की मान्यता क्या है, कोई भी भारत वाला एक हाथ से नमस्ते नहीं करेगा, अनपढ़ हो पढ़ा लिखा भी हो, भारत की मर्यादा है दो हाथ जोड़ता है, दो हाथ का ज्ञान है। भारत की माता जी अगर मंदिर में जाती है, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, मांगते हैं ना, और कोई नहीं कहेगा, है ना। गीता में भी कहा मन लगाओ, कहा भारत के अनपढ़ भी कोई माता जी मंदिर में जाके भगवान बुद्धि देता है, पता है, और किसी को पता नहीं। तो यहां भारत में मन और बुद्धि दो का ज्ञान है, ये दोनों को एक करना, एकाग्र होके बैठे हो, इधर उधर नहीं देखते हो, हिलते नहीं है, तब कह दे एकाग्र होके बैठे हो। अशरीर, शरीर का चिंतन नहीं, आत्मा का ही चिंतन करो। क्या आत्मा का चिंतन करे, बहुत कुछ है, कम से कम 5 मिनट, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण और मेरे कर्म, पांचवा मैं कहां से आया। अगर ये चिंतन 5 मिनट आपने आत्मा का चिंतन किया तो आत्म अभिमानी हो गए, शरीर का कोई भी इसके बीच में विचार नहीं आया। क्यों नहीं आया, मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है। अगर ये नहीं करते हो आप, मन के अंदर चिंतन करते हो मैं आत्मा हूं ज्योतिर्बिंदु, और कुछ याद आएगा, क्यों? बुद्धि भटकती है। तब बाबा ने कल मुरली में कहा था, माया कहां से आती है? योग में अगर आत्मा समझ के नहीं बैठते हो तो जरूर माया आती है। कहां से आती है? वो बुद्धि के अंदर याद आती है। तो यहां व्यवस्था है कि मन बुद्धि को एक करो। फिर शिव बाबा को याद क्या करेंगे? क्या शिव बाबा को याद करेंगे? वो कौन? हाँ, शिव बाबा सर्वशक्तिवान। शिव बाबा की मुख्य 8 शक्तियां हैं। एक पवित्रता का सागर। बाबा ने कहा मांगो नहीं, बाप समान बनो। मेरा बाप कैसा है वैसे बच्चा, जैसे बाप सन शोस फादर, जैसे बाप वैसे बच्चा। हमारा बाप कैसा है? पवित्र, ऐसे मुझे पवित्र बनना है। हमारा बाप कैसा है? शांति का सागर, कभी गुस्सा नहीं करता है। हमारा बाप क्या करता है? रोज ज्ञान सुनाता है। हमारा बाप कौन है? संत आनंद का सागर है। हमारा बाप कौन है? दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य विधाता है। तन मन धन भाग्य कैसे बनाओ? आज बाबा ने कहा, कल भी कहा था, तकदीर बनाना है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते हो तकदीर में लकीर लग जाती है। वो विधि बताता है, श्रीमत देता है, बच्चे तन कैसे लगाना चाहिए, कहां लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, मन कहां, धन कहां, समय श्वास कहां लगाना चाहिए, तो भाग्य कैसे बनता है, और वो भी श्रीमत के अनुसार, मनमत नहीं। तो भाग्य विधाता है और दिव्य बुद्धि दाता है। मुख्य 8 शक्ति है। एक एक शक्ति लेके बात करो। बाबा आप कहते हो पवित्रता के सागर आप हो, देखो मैं कैसा हूं, मैं आपके जैसे कैसे बनूं? तो ये नंबर 1 यात्रा है। अगर यहां बैठे मन बुद्धि, मन प्रश्न करता है बुद्धि जवाब देते, सीधा जाते हो इधर उधर, कोई आया गया कुछ पता नहीं है। हो सकता है ये नंबर 1 यात्रा है। इसको बाबा ने कहा योग अग्नि बीज रूप स्थिति ज्वाला स्वरूप, अग्नि के साथ जोड़ रहे हो। एक रस, दूसरा कोई विचार आया, पाव दर्द कर रहे, ठंडी आ रही, इधर हो रहा है, कोई दूसरी विचार नहीं है। क्यों? बुद्धि खाली नहीं है। अगर बुद्धि खाली है तो उसको कुछ याद आता है, तब कहते योग में व्यर्थ विचार आया, विकल्प आया, और कुछ आया। तो ये मन बुद्धि दोनों सीधा जाती है। 5 मिनट 10 मिनट एक एक मिनट बाबा की याद करो, चिंतन करो, तो मन बुद्धि वहां स्थिर है। जैसे आप यहां बैठे हो, सूर्य बाहर आया है तो सूर्य की किरणें आपको मिलती है नहीं? बाहर शरीर लेके जाओ, 5 मिनट बैठो उधर, सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ती है, पसीना निकलता है। ये सूर्य के नीचे बैठो, चिंतन करो उसका, कौन? आत्मा समझकर, तो आत्मा का पसीना निकलता है। तब कहा पतित आत्मा को पावन करता हूं। ये नंबर 1 रेस है। ये नहीं कर सकते हो, बाबा ने कहा सभी नहीं करते हैं, सभी को याद ही नहीं रहता आके बैठने के बाद मुझे आत्मा समझ के बैठना चाहिए। आज बाबा ने कहा कि कई बच्चों को ये याद ही नहीं है, भूल जाते हैं, तो क्या करते हैं? बाबा मेरे बच्चों को ऐसा करो, बाबा ये करो, रूढ़ियां करते हैं। हाँ वो भी चलेगा, तो भी करो, नंबर 2 आएंगे, तीसरा वो भी याद नहीं है, तो बैठते ही या नींद आ जाएंगी या और कुछ, जो मुरली सुनी मुरली का चिंतन चलेगा। आज बाबा ने ये कहा था, वो भी प्रजा भी चाहिए ना, नहीं तो राजा किसके ऊपर राज्य करेगा? ये तीनों चाहिए। ऐसे योग में भी देख लो, यहां भी बाबा के बच्चे 3 प्रकार के बच्चे हैं। आप पूछेंगे योग में गीत क्यों बजाते हैं, कोई बैठ के दृष्टि देता है क्यों? तो इसके लिए बाबा के भी 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक जिसको विधि पता है वो आके बैठते हैं, सीधा आराम से बैठ के सीधा चले जाते हैं ऊपर, इधर उधर के कोई विचार नहीं, गीत बज रहा है, कोई बैठा है, कुछ पता नहीं उसको, अपने एक रस, नंबर 1। नंबर 2 है, बैठते आराम से इधर उधर के विचार आते हैं, चाहते नहीं आते हैं, अंदर भरे हुए हैं, उसके लिए वो गीत बजाया जा रहा है। नंबर 2 के लिए कम से कम गीत का चिंतन करो। तीसरा और एक है, बैठते आकर के योग में बैठना, बैठते ही इधर देखते रहेंगे उधर देखते रहेंगे, तब सामने कोई बैठा है देखता है, हाँ मुझे कोई देख रहा है, जागृत हो जाते हैं। है ना। तो बाबा के तीन प्रकार के बच्चे, ये तीन व्यवस्था रखी है। आप पूछेंगे व्यवस्था क्यों, बाबा को याद करना, सामने क्यों बैठ, कोई बहन जी कोई भाई बैठ के क्यों यो कराता है, वो किसके लिए, वो तीसरे नंबर के लिए जो इधर उधर देखता रहता है ना, कोई मुझे देख रहा है सावधान हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बाबा के तीन प्रकार के बच्चे, राजा भी है, रॉयल फैमिली भी है, और वो भी चाहिए ना, राज परिवार वाले भी चाहिए, राजा के नजदीक जाने वाले, और प्रजा भी चाहिए। अब आप सोचो, जब आप योग में बैठते हो तो किस दौड़ में दौड़ रहे हो, अपने आप को देख लो, दिखाना पड़ेगा ना, आप देखो नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री, अपने आप को निर्णय करो। कल ऐसे नहीं कहना कि हम प्रजा क्यों, आपने जो किया वो मिलेगा, सही कि बाबा आप कुछ भी नहीं करो, बाबा हमको ऐसे करो, ऐसा होगा, जो करेंगे वो मिलेगा। फिर बाबा ने आज एक बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चे क्या करो, किसके परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हो, बैठे हैं कहां, कहां सन्मुख बैठा, बाबा इधर थोड़ी है, वो तो एक सूक्ष्म तन में एक परम धाम में है। बाबूजी बताओ, मन बुद्धि से इधर बैठे है, परमात्मा तो आपके सामने नहीं है, पहले था साकार में, ब्रह्मा बाबा आके बैठते थे तो शिव बाबा आता था, तब जो सामने बैठे वे इधर ही बैठते थे, बाबा आके इधर बैठता था, बाबा आके बैठा, शिव बाबा आता था, मुरली सुनाता था। तो साढ़े तीन सौ बच्चे बैठते थे इधर शुरू में जब आए, है ना, तो सब बाबा तब समझते, हाँ बाबा आया है, अभी तो नहीं है, तो इधर तो नहीं है ना, सूक्ष्म तन में है, तो कैसे कहेंगे, पक्का कहते हो, अभी भी आपको लगता है कि बाबा देख रहा है, अगर बाबा देख रहा है तो बाबा के सामने किसको नींद आई, कोई ऐसे उसे बैठे के चलेगा, तो प्रूफ ना, बाबा के सामने कैसे बैठेंगे फिर, है ना, भगवान बैठा है, ये स्मृति भगवान के, तो कोई बैठे आप हॉल में आते हो योग में बैठे, दो मिनट के बाद उठ के चले गए, इधर देखते हो भगवान के सामने बैठे, वो एक टिक होके बैठेंगे ना, हिलेंगे इधर उधर, हाँ, तो वो भी अपने आप को चेकिंग करो, हम कहाँ है, भगवान के सन्मुख बैठे समझते हो तो एक रस अवस्था, कैसे, हाँ अभी बाबा के कमरे में यहां भी आते हो तो बाबा देख रहा है, बाबा ने कहा सूक्ष्म तन से भी ऊपर से भी, तब कहा साकार और निराकार, है ना, वो पता नहीं चलता है, यहाँ चित्र रखा है, चित्र लगा है, इधर देखते हुए भी साकार चित्र है, ये निराकार ऊपर है, सूक्ष्म तन में ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीरधारी ऊपर है, बुद्धि वहां लगानी है, यहां देखते रहो, देखते हुए बुद्धि कहां, वहां बाबा ऊपर से देख रहा है, ये स्मृति में अगर बैठते हो तब नंबर वन, तब बाबा ने तब लगा भगवान के सामने बैठे, गलत विचार नहीं करना चाहिए, इधर उधर के विचार नहीं आना चाहिए, इधर उधर देखना नहीं चाहिए, ये सारे जो नियम है, बैठते एक बार बैठे, हाँ बाबा जब तक नहीं उठा तब तक बीच में उठ के जाएंगे, हाँ पूरा आधा घंटा योग में बैठना चाहिए, नहीं तो आए दो मिनट के बाद उधर गए, चारों धाम की यात्रा बाद में, सवेरे सवेरे नहीं, अमृत वेले और शाम को जहां भी बैठो एक जगह पर बैठो, बुद्धि योग उधर, क्योंकि मुरली सुनते सुनते दो मिनट सुनी उठ के चले गए, जब भी आओ नहीं, एक डिसिप्लिन में, स्कूल में भी टीचर आया, सब लोग आके बैठते, टीचर ने पढ़ाना बंद किया तब जाते, अभी देख लो योग में जब भी आओ, जब भी गए, बीच में भी आए, नहीं एक नियम होना चाहिए। तब बाबा ने कहा अगर ये बुद्धि में है, हाँ बाबा चार बजे आता है, तुरंत हमें पहुंचना है, चार बजे गीत, साढ़े तीन बजे का बजता है, चार बजते पहले पहुंचना है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए ना, तपस्या भगवान बैठा, ये अगर जिसके बुद्धि में है वो एक्यूरेट समय पर आके बैठ जाते हैं और एक्यूरेट विधि से, क्योंकि उनको पता है बाबा कहीं गया नहीं है, यहां ही है, पक्का कि ऐसे ही, कैसे कहते हो, देखो उसका मैं आपको प्रूफ बताता हूं कि कहेंगे कैसे। देखो एक बहन के पिताजी 50 साल से सेंटर में रहते थे, तो दो लड़के थे, एक लड़की थी, लड़के को सेंटर में रखा, सेंटर चलाती है, आज भी गुजराती में है और आज भी पिताजी है, 90 साल का है। दोनों बेटे शादी करके दिए थे, तो अब भी 5 साल पहले उनको पैरालिसिस हुआ पूरा और शांतिवन में थे। तो बड़े बेटे को लगा रिटायर्ड हो गया कि पिताजी की सेवा करना चाहिए, तो आए दादी के पास, दादी को कहा दादी हम पिताजी को ले जाते हैं, दादी ने कहा ले जाओ। लेकिन बहन को ठीक नहीं लगा, 50 साल से बाबा की यज्ञ की सेवा किया, ब्रह्मा भोजन खिलाया बाबा ने, सब कुछ किया, अभी बहू क्या खिलाएंगी, लेकिन दादी को कुछ बोल नहीं सकता है और सेंटर में वो भी रख नहीं सकती है, क्या करे, चुप। फिर तीनों आए दुबन में, बाबा के कमरे में बैठे, लेकिन बहन ने बाबा को बोला बाबा आपने, आपका पिता बेटा है, मेरा नहीं, मेरा पिताजी नहीं, आपका है, आपने 50 साल खाना खिलाया, ब्रह्मा भोजन खिलाया, ज्ञान सुनाया, सेवा किया, अब आप उनको भेज रहे हो, मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन मेरा कोई अधिकार नहीं है, आपका जिम्मेवारी है, इतना ही बोला। तो बाबा ने सुना, सुना कैसे सुनेगा, फोटो है, कहां सुना, अगर आप बाबा के कमरे में जाते हो तो बाबा देखता आपको, हाँ संकल्प किया उसने, तो बाबा कहां था, अगर आप कहेंगे हम परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हैं तो कैसे बैठते हैं, हाँ तो संकल्प, बाबा तो इधर नहीं था, बाबा तो ऊपर है, जाता है फिर भी जाता है, हाँ तब कहा, तो ये ध्यान चाहिए। तब बाबा ने आज बहुत अच्छी बात सुनाई, ये बच्चे सदा मुरली सुनने बैठते हो, योग करने बैठते हो, किसके सामने बैठे हो, कहां है बाबा, कोई पूछेंगे कहां है, तब बाबा के कमरे में भी जाते हो, यहां भी बैठते हो, कहीं भी बैठो, बैठते बाबा बच्चों को देखता है, देखो उसकी आवाज बाबा ने सुना, रात शाम को शांतिवन में गुलजार दादी के तन में बाबा आता है, बाबा मुरली सुनाते थे, सुनाने के बाद तीनों बाबा से दृष्टि देने के स्टेज पर गए और बाबा ने उस बच्ची को कहा बच्ची जो निर्णय लिया वो सही है, उसको याद भी नहीं है, सवेरे बाबा के कमरे में ऐसे बोल के गई, हर संकल्प बाबा सुनता है और जवाब वहां दिया। शाम को सवेरे आए थे इधर बाबा के कमरे में और शाम को गुलजार दादी के तन में शांतिवन में बाबा आता है, तो बाबा ने वहां जवाब दिया बच्ची जो संकल्प किया निर्णय लिया वो सही है, तो क्या निर्णय उनको याद भी नहीं ऐसे बोल के गई, ये भी इतना विश्वास नहीं था बाबा सुन रहा है। कभी कभी हम देखते हैं बाबा देख रहा है, क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ, आप आराम से रहते हो, कुछ भी फोटो दिखाई देता है अंदर कैमरा में निकल रहा है ना, सब जगह पर कहां जा रहे हो क्या करो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, भगवान की नजर एक एक बच्चों पर है, सब कुछ सुनता है देखता है, जहां जरूरी है तो उसको जवाब दिया तुरंत, और भाई लेके भी गया और भाई ने 1 साल सेवा किया, 1 साल के बाद भाई शरीर छोड़ के गया और आज भी पिताजी है, बहन अपने सेंटर में लेके गई, आज भी सेवा कर रही है उनकी भी, बाबा देखो सुनता है, उसकी इच्छा थी, बाबा ने उसकी भी इच्छा स्वीकार किया, हाँ आप करो लेकिन भाई का भी अधिकार है, तुम भी सेवा करो, दोनों को संतुष्ट करता है, एक नहीं। अभी वर्तमान जजमेंट देंगे कोई वकील को, जज क्या करेगा, एक संतुष्ट होगा एक नाराज हो जाएगा, यहां भगवान देखो दोनों को, उसकी बेटे की भी इच्छा थी तो उसकी भी इच्छा पूर्ण किया, बहन की भी इच्छा थी मैं भी पिताजी की सेवा करूं, लेकिन आज भी बाबा ने उनकी भी इच्छा पूर्ण किया, आज भी पिताजी 90 इयर्स है, 99 का, आज भी सेंटर में रख के सेवा करती है, तो भगवान सुनता है, लेकिन सब कुछ सुने सब कुछ, आप जैसे आप कहो ऐसे करें, आज ये कहेंगे आज एक दे दो, कल कहेंगे बाबा ऐसा करो ये ठीक नहीं, जैसे आप कहें कि उसको जैसे करना वो करना चाहिए, ये सोचने लायक है। कभी आप कहेंगे बाबा हमारा कुछ सुनता ही नहीं है, आज आपने ये करो कहा, कल कहेंगे बाबा ये करो ये नहीं ये दे दो, चलेगा, आप जैसे कहते वैसे बाबा सुनकर करे, कि बाबा को जो करना है वो करे, वो आप बताओ भाई जी बताओ, पक्का, तो आप नहीं कहते बाबा हमको हमारे ये सुनो ये होना चाहिए आज ये होना चाहिए, हाँ बाबा बाबा कहेगा कभी कुछ होता है, कर्मों का गति भी है ना, कर्मों का हिसाब किताब भी होगा ना। बाबा ये क्यों बच्चे, कर्मों का हिसाब किताब है। हाँ तो चलेगा, पेपर भी लेता है कभी, चलेगा। बता सोचो, सोच के समझ, सोचना अच्छी तरह से। बाबा पूछता है बच्चे जो आप कहो वो मैं करूं, या मैं जो चाहता हूं वो करूं। इस पर आप अच्छी सोचना। जब भी बाबा के कमरे में बैठते हो, बाबा से बात करते हो, भगवान पूछता बच्चे जो आप कहते हो मैं करता हूं, चलेगा मंजूर, या मुझे जो करना है, क्योंकि मैं आदि मध्य अंत जानता हूं। ये आपको देने से क्या होगा, आपके कहने अनुसार ये करने से क्या होगा, वो जानता है। तो भगवान को आप अधिकार दो, बाबा आप जो करना चाहते हो वो करो, कि मुझे जो करना चाहिए वो करना चाहिए। बताओ, सोच लो, अच्छी तरह सोचना। कभी कभी हम कहते हैं ना बाबा हमारा सुनता नहीं, बाबा ने ऐसा नहीं किया, है ना, बहुत कुछ। आज बाबा ने कहा कौन सी फाइल, फरियाद, है ना, नहीं फाइन, फाइल कौन सी होनी चाहिए, फाइन बनना चाहिए। तो बाबा आप नंबर वन, आप जो चाहते हो, जो योग्य है मेरे लिए वो आप करो। लेकिन हमारी इच्छा होती है आज ये चाहिए, कल ये नहीं, ठीक नहीं, ये चाहिए, जैसे आपको वैसे चलना चाहिए। सोच लो, सोचने लायक चीज है। तो निर्णय ले, अपने आप को समझाओ, जो बाबा तुम उसको कहते हैं, जो भगवान करता है उसमें कल्याण कहने में आता है, लेकिन वास्तविकता नहीं है। वास्तव बाबा ने मेरा आपने ये नहीं किया, यही बोलते हैं ना, ये नहीं किया, हमको जो चाहिए वो करना चाहिए। तो भगवान आपके कहने अनुसार चले। हाँ, बस एक दोस्त, एक पॉइंट तीसरा बाबा ने आज कहा, क्या पॉइंट सुनाया तीसरा, सदा हर कर्म में हर सेकंड एक स्मृति रहे अंदर, करण करावन हार करा रहा है, वो खाना खाने गए वो खिला रहा है, कुछ भी करते वो करा रहा है, ये स्मृति ये कब रहेंगी। जैसे मुरली सवेरे सुनी, अपने आप सुनने से याद नहीं रहता है, आपको नहीं हमें भी नहीं रहता है, सुनने के बाद लिखना चाहिए, लिख करके रखना चाहिए अपने को, सवेरे दिन में शाम को बार बार पढ़ाओ, और सामने कोई मिला उनको भी वर्णन करो, उनको भी सुना, देखो आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, मुख से ज्ञान रतन निकलने चाहिए। आज आपने किसी से सबसे बोला तो सही, किसी को ज्ञान के रतन दिया, दिया किसी को नहीं, एक ने भी मुरली के पॉइंट किसी को नहीं सुनाया, बाकी बात तो किया, तो कब सुनाएंगे, कब सेवा करेंगे। ब्राह्मण वो जिसके मुख पर सदा ज्ञान रतन रहना चाहिए, दान करना चाहिए। तो किया आज, नहीं किया, एक ने भी नहीं किया, किया किसी को सुनाया, आपस में किसी को भी, आपके मुख से पूछ लो, कोई भी मिले बात करो, बात नहीं करना ऐसे नहीं कहा। तो सिर्फ ज्ञान रतन, आज देखो ऐसे माताजी मिली, मिलते ही पूछा, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी, है ना, आप उनको, उसने सुन, उनको अच्छा लगा न लगा, लेकिन आपके मुख से क्या निकला, आपके स्मृति में कौन आया, इसको कहा कि निरंतर बाप की स्मृति, बाबा ने जो कहा श्रीमत निरंतर अपने अपने रहेगा, किसी को देखते रहिए माता जी कहां से आई, गले में क्या डाला, यही याद आएगा, है ना, ये क्यों डाला, क्या डाला, यही क्यों आदत बनी, आधा कल्प से शरीर को देखते ही शरीर के विचार आएगा, नहीं आना चाहिए संभव नहीं है इस कलयुग में, आधा कल्प से आदत बनी है ना। अभी माता जी को देखते आत्मा देखो, आत्मा दिखाई देता है नहीं, समझ है, इस ब्रकुटी में आत्मा बैठा है, बाबा के बच्चे समझ, इनको देखते ही आज के मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए, आपके बुद्धि में आना चाहिए स्मृति, तब समझना हम नंबर वन ब्राह्मण है। किसी को देखते ही स्मृति में क्या आया, जैसे स्मृति वैसे वृत्ति, वैसे दृष्टि वैसे कृति, कर्म, कर्म हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए, हमारी वृत्ति श्रेष्ठ होना चाहिए, सबके प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए, अपने अपने होने वाले है ना, कितना भी सुनो आप। तो इसको परिवर्तन करने के लिए सहज तरीका है, सिंपल, बहुत मेहनत करनी, बहुत पढ़ने से भी नहीं होता है, एक ही रोज सारी रोज मुरली सुनते हो, एक मुरली के पॉइंट आपके जेब में आपके साथ होना चाहिए, और सवेरे से रात तक, मैंने देखा अपने जीवन में एक ही उन्नति का आधार है। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, व्यर्थ से विकल्पों से मुक्त होना चाहते हो, एक ही साधन दिखाई दिया। क्योंकि मुरली सारा दिन सब जगह लेके पढ़ते नहीं रह सकते, एक शब्द कोई भी सारे मुरली में से एक शब्द सुनते सुनते अंडरलाइन करना, आज बाबा ने ये शब्द मेरे लिए कहा, इसको आज ही अभ्यास करना चाहिए, आज ही उसका चिंतन करना चाहिए। ये कैसे करो, ये कैसे करो, अपने आप से पूछते रहो, ये चिंतन करने का तरीका। फिर कोई मिला, उनको पूछना, देखो आज बाबा ने ये कहा, बार बार तो व्यर्थ विकल्प जो आने, देखने की सोचने की जो आदत बनी है वो अपने आप परिवर्तन होते जाएंगे। नहीं तो अगर ज्ञान नहीं है, कुछ तो होगा ना, खाली मन रहेगा नहीं, कोई ना कोई याद आएंगी, कोई ना कोई विचार आएगा, तो मन अपने आप को किससे भरपूर रखो, ज्ञान रत्न, एक बूंद बस, बहुत भी नहीं चाहिए, भगवान के एक बूंद के प्यासे हैं। एक एक बूंद इकट्ठा करो, 30 दिन के पास 30 बूंद आपके जीवन में होंगे। इसको कहते हैं धारणा। धारणा अपने आप नहीं होती है, कहते याद धारण होता ही नहीं है, है ना। 100 दफा मुरली पढ़ते रहो तो धारणा नहीं होंगी, याद नहीं रहेगा, आदत, यह अभ्यास डालना चाहिए। एक ही पॉइंट, तब कहेंगे जब बाबा ने आज का करण करावनहार। तो ये 3 पॉइंट्स बाबा ने आज बहुत अच्छी सुनाई। मुरली सुनते समय 1 2 3 ले लो, अपने आप को चेकिंग करो। हम जब योग में बैठते हैं हमारी अवस्था क्या है, हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इधर बैठने के बाद क्या कर रहे हो, किसको याद कर रहे, किसकी याद आई, और इधर उधर के विचार आए कहां से आए, अपने आप को पूछ लो, चेकिंग करो, क्यों आए, इधर बैठने का अमृत वेले योग में आए तो इधर उधर के विचार क्यों आए, कहां से आए वो ढूंढो, है ना। ये अपने आप को चेकिंग करेंगे नहीं, ये मन खाली था, ये बुद्धि खाली थी, उसको काम नहीं दिया। खाली मन खाली बुद्धि जरूर कुछ ना कुछ याद आएगा ना, नहीं आना चाहिए संभव नहीं। टेप रिकॉर्डर ऑन किया तो गीत बजेगा, नहीं बजना चाहिए नहीं, अंदर भरा हुआ है। तो तब बाबा ने कहा अपने मन और बुद्धि को ज्ञान के आधार से चलाओ, अगर नहीं चलाएंगे तो किस कैसे चलेगा वो, अपने पुराने आदत के अनुसार मन बुद्धि चलेंगी। दो रास्ते हैं, दोनों में से आपको ढूंढना है। अगर आप चुपचाप ऐसे बैठ जाओ तो वो चलेगा दोनों, तो पुरानी आदत के अनुसार चलेगा, कभी किसके विचार कभी किसके विचार। अगर इधर उधर के विचार नहीं आना चाहिए तो क्या करना चाहिए, तो काम दे दो उनको, तो मन और बुद्धि को काम ज्ञान के आधार से चलाओ। तो ज्ञान का आधार बताया, क्या करना चाहिए, बैठते ही अपने आप से बात करो, मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है। तो ये मन बुद्धि को काम देंगे तो काम देते देते मन बुद्धि अपने आप, ज्ञान के आधार से अपने आप मन बुद्धि को चलाओ। तो कैसे चलाना चाहते हो, निश्चिंत हो गए आराम से देखते बैठो, खाली रहेगा मन बुद्धि, जरूर इधर उधर के विचार आएंगे, समझ में आया। जब भी योग में बैठते हो अमृत पहले शाम को, हाँ नींद भी आएंगी, व्यर्थ भी आएगा, बहुत कुछ होगा, 2 मिनट बैठे पाव दर्द करेगा क्योंकि शरीर पर ध्यान है। अंदर घुसते समय सोचो, खाना खाते कहते बीच में उठ जाते हो, पूरा खा के उठेंगे ना, तो ये भी आत्मा के लिए भोजन है। सवेरे शाम 2 दफा जब बैठते हो तो ये आत्मा को शक्ति सारे कल्प में एक ही दफा मिलता है, तो आत्मा को सर्वशक्तियों से संपन्न करो। तो जब भी सवेरे बैठते हो विधि पूर्वक बैठो, कहीं भी घर में बैठो, जब घर में जाने के बाद घर में बैठते हो वहां भी, क्योंकि बाबा की नजर है। सेंटर में जाते हो सेंटर में, यहां आए इतने नहीं, यहां आने के बाद ही बैठना चाहिए, घर में जाने के बाद कुछ भी करो नहीं, कहीं भी रहो तो परमपिता परमात्मा मुझे देख रहा है, बाबा हर एक बच्चों को देखता है, कहीं भी रहो आप। जैसे माता जी इधर है, उनके बच्चे बाहर कोई विदेश में पढ़ते हैं, उनको कौन याद आएगा, बच्चे याद आएंगे ना, दिखाई देंगे ना, हाँ ऐसे है अभी पढ़ रहा होगा, अभी कुछ कर रहा होगा, ऐसे भी ऊपर से बाबा की नजर है। कहीं भी बैठो, लोग इधर से जाने के बाद घर में भी बैठेंगे विधि पूर्वक आराम से, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हम, बाप को दिखाने के लिए, बाबा की नजर मेरे पर है, आराम से बैठो, आत्मा, अब इसको कहते हैं आत्मा समझ परमात्मा, नंबर वन यात्रा है, मंजूर। नंबर टू दो ही काम है, एक मुरली के पॉइंट आपके बुद्धि में याद रहना चाहिए, गति सदगति करना, अपने आचरण बोल कर्म परिवर्तन करना चाहते हो, अपने को सुधारना चाहते हो, अपने सुधरेगा नहीं, ठीक है। ओम शांति।